आप सुन रहे हैं महाभारत के पात्र सिर्फ ऑडियो पिटारा पर मेरे यानी अनामय वर्मा के साथ। गंगा के किनारे सैर करते हुए महाराज शांतनु ने अचानक एक अजीब सदृश्य देखा। उन्होंने देखा एक बहुत ही आकर्षक नवयुवक धनुष बाण का अभ्यास कर रहा है। उसने अपने बाणों से गंगा की धारा के आगे मेड़ सी खड़ी कर दी है, जिससे जल की धारा वहीं रुक गई है। एक बूंद पानी भी आगे बहता दिखाई नहीं दे रहा है। महाराज शांतनु को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो किनारे किनारे आगे बढ़ने लगे। ऐसे में उन्हें देवी गंगा की बड़ी याद आने लगी। वो जरा सा और आगे बढ़े क्योंकि वो उस नवयुवक को पास से देखना चाहते थे। इतने में ही वहां देवी गंगा प्रकट हो गई। गंगा को देखते ही महाराज शांतनु को समझते देर नहीं लगी कि हो न हो, ये नवयुवक उन्हीं का वो आठवां बेटा है जिसे गंगा को उन्होंने जल में बहाने नहीं दिया था और प्रश्न कर लिया था। देवी गंगा ने महाराज शांतनु के मन में उठ रहे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, महाराज ये देवव्रत है आपका वही आठवां बेटा जिसे मैंने जन्म दिया था। आपका ये बेटा देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जैसा ज्ञानी है और देवराज इंद्र जैसा धनुर्धर भी है। आप देवव्रत को स्वीकार करें और अपने साथ ले जाएं। शांतनु आश्चर्य से ये सब देखते सुनते रह गए और उन्हें पता ही नहीं चला कि कब देवी गंगा देवव्रत को सौंप कर वहां से चली गई। देवव्रत को पाकर महाराज शांतनु बहुत प्रसन्न हुए। उसे लेकर महाराज शांतनु राजमहल पहुंचे तो ये समाचार पूरे हस्तिनापुर में फैल गया। प्रजा बहुत प्रसन्न हुई। सब लोग निश्चिंत हुए कि हस्तिनापुर के सिंहासन को अगला राजा और कुरु वंश को अपना उत्तराधिकारी मिल गया है। समय अपनी चाल से आगे बढ़ रहा था। देवव्रत को पाकर शांतनु अब गंगा के बिछड़ जाने का दुख धीरे धीरे भूलते जा रहे थे। राजपाट में भी उनका मन दोबारा लगने लगा था। फिर से सब कुछ सुंदर और सही ढंग से चलने लगा था। इस तरह एक दिन महाराज शांतनु ने राजसभा में गुरुजनों से सलाह करके देवव्रत को अपना युवराज बना लिया। देवव्रत अपने गुण और व्यवहार से राजमहल और राजघराने के साथ साथ प्रजा में भी बहुत लोकप्रिय होने लगे थे। देखते ही देखते हस्तिनापुर के युवराज देवव्रत ने राज्य के बहुत से महत्वपूर्ण कार्यों को अच्छी तरह समझ लिया था और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को संभालना शुरू कर दिया था। इससे महाराज शांतनु पर राजपाट का भार काफी कम हो गया था। इसीलिए महाराज शांतनु अब अक्सर जंगलों में शिकार के लिए या सुंदर सुंदर स्थानों के दर्शन का आनंद लेने के लिए चले जाया करते थे। एक दिन यमुना के किनारे सैर करते समय उनके साथ एक अजीब घटना घटी। यमुना किनारे महाराज शांतनु सुंदर मौसम का आनंद ले रहे थे। ऐसे में उनको एक नई अजीब सी गंध ने आकर्षित किया। कुछ ही देर में वो अपने चारों ओर सिर्फ उसी गंध को महसूस करने लगे। उस गंध ने उन पर इतना असर डाला कि वो उस गंध की खोज में बेसुध उसी ओर जाने लगे जहां से उन्हें वो आती हुई महसूस हो रही थी। उस गंध के पीछे पीछे चलकर महाराज शांतनु यमुना के किनारे बसे निषादों के गांव में पहुंच गए। वहां जाकर महाराज शांतनु ने जब जाना कि ये दुर्लभ गंध दासराज की बेटी सत्यवती के शरीर से आती है तो आश्चर्यचकित शांतनु गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें न जाने क्यों सत्यवती को देखने की इच्छा होने लगी, उससे मिलने की इच्छा होने लगी। उनकी ये इच्छा पूरी होने में ज्यादा देर नहीं लगी और जब महाराज शांतनु ने दासराज की बेटी सत्यवती को सामने से देखा तो वो उसे देखकर दंग रह गए। महाराज शांतनु उसके रूप पर ऐसे मोहित हुए कि उन्होंने दासराज के आगे सीधे ये प्रस्ताव ही रख दिया कि वे उनकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। इस पर दासराज ने बड़े ही संयम से काम लिया और उत्तर दिया, महाराज यदि आप वचन दें कि सत्यवती का बेटा ही हस्तिनापुर के सिंहासन का अगला अधिकारी होगा तभी यह विवाह होना संभव है। महाराज शांतनु देवव्रत से बहुत प्यार करते थे। उन्हें यह भी पता था कि आगे चलकर उनका कोई भी बेटा हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए देवव्रत से ज्यादा योग्य नहीं हो सकता। महाराज शांतनु दासराज से कहते हैं,
मैंने तो हस्तिनापुर का सिंहासन युवराज देवव्रत को सौंपने का पहले ही निश्चय कर लिया है। मैंने इसके लिए राजसभा में सबसे शुभ समय निश्चित करने के लिए भी कह दिया है। देवव्रत के अलावा कोई और हस्तिनापुर का राजा नहीं, नहीं दासराज ये हो ही नहीं सकता। मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता।
दासराज भी अपनी बात पर अड़े रहते हैं, इसीलिए महाराज शांतनु एक पल भी वहां नहीं रुके और सत्यवती से विवाह की इच्छा को मन ही मन मारकर लौटकर हस्तिनापुर चले आते हैं। इसके बाद महाराज शांतनु स्वयं को दैनिक कार्यों में व्यस्त रखने लगे, या यूं कहें कि व्यस्त रखने की कोशिश करने लगे। राजपाट के कार्य से समय निकालकर शिकार करने का आनंद लेने के लिए वे दूर दूर निकल जाते। वे हर तरह से कोशिश करते रहे कि सत्यवती की याद अपने मन से निकाल सके, लेकिन वो किसी भी तरह सत्यवती की सुंदरता और उसके शरीर की उस विशेष गंध को भूल नहीं पा रहे थे। लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सत्यवती को भूलने नहीं दे रही थी। उनका मन बार बार कमजोर होता जा रहा था, वो धीरे धीरे टूटते जा रहे थे, ना चाहते हुए भी एक बार फिर उनके जीवन में निराशा छाने लगी थी।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरीज के लिए सुनते रहिए ऑडियो पिटारा। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।